एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो महज 100-125 पन्नों की है, लेकिन जिसका वजन शायद हजारों पन्नों से भी ज्यादा भारी महसूस होता है।
एली वीजल की नाइट।
जी,
ये सिर्फ एक संस्मरण भर नहीं है, बल्कि इतिहास के एक ऐसे बेहद स्याह पन्ने का शक्तिशाली दस्तावेज है जिसे भूलना शायद मानवता के लिए बहुत घातक हो सकता है।
आपने बिल्कुल सही कहा है। एली वीजल, मतलब 1928 से 2016 तक का उनका जीवन काल रहा। रोमानिया में जन्मे, फिर अमेरिकी यहूदी लेखक बने, प्रोफेसर, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, और सबसे अहम बात, वो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे।
नाइट उन्हीं की आप बीती है। उस 15 साल के लड़के की कहानी है ये, जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की आप सोच भी नहीं सकती वैसी भयावहता से गुजरा। ये किताब असल में उन लाखों पीड़ितों की मूक चीखों को एक आवाज देती है,
सही,
और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान मतलब किस हद तक गिर सकता है, और ये जो इंसानियत है ये कितनी नाजुक चीज है।
और शायद यही बात इसे आज भी उतनी ही जरूरी बनाती है ना, शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी। यह हमें लगातार याद दिलाती है कि जब हम अन्याय देखकर आंखें मूंद देते हैं तो क्या हो सकता है, मतलब उदासीनता कितनी खतरनाक है।
बिल्कुल, उदासीनता ही सबसे बड़ा खतरा है।
चलिए फिर एली वीजल की जिंदगी औरते हैं। तो एली वीजल का सफर शुरू होता है 1928 में सिगेट ट्रांसिल्वेनिया से, जो अब रोमानिया का हिस्सा है। एक पारंपरिक यहूदी परिवार, उनका शुरुआती जीवन कैसा था, मतलब वो माहौल जिसने उन्हें घड़ा?
देखिए, उनका बचपन जो था वो गहरी धार्मिक आस्था और तालीम में डूबा हुआ था। परिवार काफी धार्मिक था और एली खुद भी तलमूड के अध्ययन में। तलमूड, आप जानते हैं, यहूदी कानून, नैतिकता, इतिहास का एक विशाल ग्रंथ है।
जी,
और कबाला यानी यहूदी रहस्यवाद, उसके गूढ़ अध्ययन में गहरी रुचि रखते थे। उनके लिए ये महज पढ़ाई नहीं थी, ये उनके लिए जैसे अस्तित्व को समझने का एक तरीका था।
और परिवार में कौन कौन थे, माता पिता का क्या प्रभाव था उन पर?
उनके पिता श्लोमो, वो समुदाय में काफी सम्मानित थे, एक दुकानदार थे, और उनका जोर तर्क पर और कह सकते हैं आधुनिक दुनिया से जुड़ाव पर रहता था।
अच्छा,
वहीं उनकी माँ सारा, वो ज्यादा पारंपरिक हसीदिक पृष्ठभूमि से थीं, तो उन्होंने एली की जो आध्यात्मिक जिज्ञासा थी उसको पोषित किया, उसको उभारा। घर में तीन बहनें भी थीं, हिल्डा, बीट्रिस जिन्हें बी कहते थे, और सबसे छोटी ज़िपोरा, जिनसे एली को खास लगाव था। तो आप समझ सकते हैं ये युद्ध से पहले के यूरोपियन यहूदी जीवन की एक जीती जागती तस्वीर थी, परंपरा, समुदाय, ज्ञान, इन सब का संगम।
उनके जीवन पर एक और व्यक्ति का जिक्र आता है अक्सर, मोशे द बीडल। ये कौन थे और इनका क्या महत्व था उनकी जिंदगी में?
रहस्यमय किस्म के व्यक्ति थे।
हाँ,
उन्होंने ही युवा एली को कबाला की गहराइयों से परिचित कराया था।
अच्छा, तो एक तरह से गुरु जैसे थे।
हाँ, आध्यात्मिक गुरु कह सकते हैं, लेकिन उनका महत्व सिर्फ यहीं तक नहीं था। 1942 में जब सिगेट से विदेशी यहूदियों को निकाला गया तो मोशे भी उनमें शामिल थे, लेकिन वो किसी तरह बचकर वापस आ गए।
बचकर वापस आ गए
जी, और उन्होंने वापस आकर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाई, कैसे गेस्टापो मतलब नाजी सीक्रेट पुलिस ने लोगों को जंगल में ले जाकर उनसे ही कब्रें खुदवाई और फिर वहीं उन्हें गोलियों से भून दिया। बच्चों को हवा में उछालकर निशाना बनाया गया।
हे भगवान, और लोगों ने क्या कहा, उनकी बात मानी?
किसी ने नहीं मानी, यही तो त्रासदी थी। लोगों ने उन्हें पागल समझा, उनकी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। ये शायद उस सामूहिक इनकार या डर कह लीजिए, उसका पहला संकेत था जो बाद में सिगेट के यहूदियों के लिए इतना विनाशकारी साबित हुआ। वो अनदेखी, वो उदासीनता,
जिसकी कीमत उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ी। 1944 का वसंत, जब एली सिर्फ 15 साल के थे, जर्मन सेना ने सिगेट पर कब्जा कर लिया, और फिर वही सब हुआ जो पूरे यूरोप में हो रहा था।
जी, यहूदी विरोधी कानून लागू हो गए, घरों से निकलने पर पाबंदी लग गई, कीमती सामान जब्त कर लिए गए, पहचान के लिए वो पीला सितारा पहनना अनिवार्य कर दिया गया, और फिर कुछ ही समय बाद उन्हें जानवरों की तरह घेटों में, मतलब शहरों के वो तंग अलग थलग इलाके होते थे ना, उनमें ठूस दिया गया।
जी, घेटोस।
बिल्कुल, और उसके भी कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें मवेशियों को ढोने वाली रेलगाड़ियों में, सोचे, एक एक डिब्बे में 80-80 लोगों को भरकर एक अज्ञात भविष्य की ओर भेज दिया गया। वो सफर ही अपने आप में एक यातना की शुरुआत थी।
और इसी सफर में वो मैडम शैक्टर की दिल दहला देने वाली चीखें थीं, आग की लपटों की चीखें।
हाँ बिल्कुल,
जिन्हें कोई और नहीं देख पा रहा था। लोगों ने चुप कराने के लिए पीटते भी थे, पर उनकी चीखें तो जैसे आने वाली हकीकत का एक भयानक पूर्वाभास थी, है ना?
बिल्कुल सही कहा आपने, एक भयानक पूर्वाभास। और वो हकीकत थी ऑशविट्ज़ बिर्कनाउ। पहुंचते ही स्टेशन पर हवा में जलते हुए मांस की गंध थी, अजीब सी भयानक गंध।
उफ़।
और फिर हुआ वो कुख्यात चयन, जहां डॉक्टर मिंगेला जैसे नाथसी डॉक्टर खड़े होकर तय करते थे कि कौन दाहिनी ओर जाएगा यानी मजदूरी करने, और कौन बाईं ओर यानी सीधा गैस चेम्बर।
उसी वक्त स्टेशन पर ही,
हाँ वहीं, चंद पलों में एली अपनी माँ और अपनी सबसे छोटी बहन ज़िपोरा से हमेशा के लिए बिछड़ गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात साबित होगी। वो बस भीड़ में अलग दिशा में चले गए।
ये कल्पना करना भी कितना मुश्किल है, एक पल में पूरा परिवार आंखों के सामने बिखर गया।
उन्होंने और उनके पिता ने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला। एली ने कहा मैं 18 का हूं, जबकि वो 15 के थे। पिता ने 50 की जगह 40 बताई। इसी झूठ ने उन्हें तत्काल मौत से बचा लिया।
अच्छा।
लेकिन जैसे ही वे कैंप के अंदर बढ़े, उन्होंने ना सिर्फ जलती हुई लाशों के विशाल गड्ढे देखे, बल्कि उन्होंने देखा कि ट्रकों से बच्चों के शव उन गड्ढों में फेंके जा रहे हैं। जिंदा बच्चों को भी फेंका जा रहा था।
नहीं।
हाँ, वहीं उस जलते मांस की गंध और उस दृश्य के साथ उनके अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। उनकी बचपन की आस्था, ईश्वर पर उनका जो अटूट भरोसा था, वो वहीं भस्म होने लगा। उन्हें एक नंबर दिया गया, कैदी नंबर A7713।
A7713।
सिगिट का वो धार्मिक छात्र एलिएजर मर चुका था। अब सिर्फ A7713 था जिसे बस किसी तरह जिंदा रहना सीखना था। तलमूड और कबाला की वो सारी शिक्षा पीछे छूट गई थी, अब जिंदा रहने की क्रूर कला सीखनी थी।
ऑशविट्ज़ के बाद उन्हें बुना के वर्क कैंप भेजा गया था, वहां के हालात कैसे थे?
इससे भी बुरे। बुना में हालात शायद, हाँ, कुछ मायनों में और भी बदतर थे। गुलामों की तरह हाड़ तोड़ मजदूरी करनी पड़ती थी। खाना तो बस नाम का था, और रोजमर्रा की क्रूरता वो तो जैसे आम बात थी।
क्रूरता मतलब?
मतलब उन्हें इडेक नाम के कपो मतलब कैदियों में से ही चुना गया एक ओवरसीयर होता था, जो अक्सर नाज़ियों से भी ज्यादा क्रूर होते थे।
अच्छा।
तो उस इडेक ने एली को बेरहमी से सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि एली ने उसे गलती से एक पोलिश लड़की के साथ देख लिया था। उनके सोने के दांत को निकालने के लिए एक दूसरे फोरमैन ने उन्हें लगातार प्रताड़ित किया, उनके पिता को भी धमकाया।
सोने का दांत निकालने के लिए?
जी हाँ।
वो सोना भी नाज़ियों के लिए कीमती था। और फिर वो पाइपल की फांसी, वो घटना पढ़ते हुए तो जैसे आत्मा कांप जाती है।
हाँ, वो शायद नाइट के सबसे ज्यादा दर्दनाक और गहरे दार्शनिक क्षणों में से एक हैं। पाइपल एक युवा, बहुत मासूम सा दिखने वाला लड़का था, डच ओवरसियर का प्यारा सेवक। उसे दो अन्य लोगों के साथ कथित तौर पर हथियार छिपाने के आरोप में फांसी दी गई। क्योंकि लड़के का वजन बहुत कम था, फांसी का फंदा उसकी गर्दन तुरंत नहीं तोड़ पाया। पूरा कैंप, हजारों कैदी, उसे आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरते देखने को मजबूर थे, हवा में झूलते हुए।
और उसी वक्त किसी ने पूछा था, ईश्वर कहाँ है?
हाँ, भीड़ में से किसी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, फॉर गॉड सेक, वेयर इज गॉड? और एली ने लिखा है कि उन्होंने अपने अंदर से एक आवाज सुनी जो कह रही थी, वेयर ही इज, दिस इज वेयर, हैंगिंग हियर फ्रॉम दिस गैलोज। यानी ईश्वर कहाँ है? यही है वो, इसी फांसी पर लटका हुआ। ये क्षण उनके लिए कह सकते हैं ईश्वर की मृत्यु का क्षण था। वो ईश्वर जो सर्वशक्तिमान और न्यायप्रिय माना जाता था, वो उस मासूम बच्चे की धीमी दर्दनाक मौत को नहीं रोक सका या नहीं रोका। ये उनके लिए एक भयानक एहसास था कि शायद वो एक ऐसे ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं जहां ईश्वर या तो मर चुका है या फिर पूरी तरह उदासीन है।
इसके बाद तो उनकी सारी प्राथमिकताएं बदल गई होंगी ना?
हाँ, उनकी एकमात्र जिम्मेदारी अब सिर्फ खुद को और अपने पिता को किसी भी तरह जिंदा रखना रह गई थी। आस्था के सवाल पीछे छूट गए थे।
इसके बाद हालात और बिगड़ते गए। जनवरी 1945 आया, डेथ मार्च, वो क्या था?
हाँ, जनवरी 1945 की कड़ाके की सर्दी, जब सोवियत सेना नज़दीक आने लगी तो नाज़ियों ने कैंप खाली करने का फैसला किया। उन्होंने हजारों कैदियों को बर्फीले तूफान में मीलों पैदल चलने पर मजबूर किया, बिना खाने बिना गर्म कपड़ों के। इसी को डेथ मार्च कहा जाता है।
डेथ मार्च, नाम ही काफी है
जी। यहाँ इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी थी। लोग थक कर गिर रहे थे, उन्हें वहीं गोली मार दी जाती थी या बर्फ में जमने के लिए छोड़ दिया जाता था। लोग एक दूसरे को रौनते हुए भाग रहे थे, कमजोर पीछे छूट रहे थे, मर रहे थे।
इसी दौरान वो रब्बी एलियाहू वाली घटना हुई थी ना?
हाँ, वो बहुत मार्मिक घटना थी। एली ने देखा कि रब्बी एलियाहू अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। मार्च के दौरान वो बिछड़ गए थे। एली को याद आया कि उसने उस बेटे को देखा था जो जानबूझकर अपने बूढ़े कमजोर पिता से तेज चलकर आगे निकल गया था ताकि उनसे पीछा छूट जाए।
ओ नहीं।
ये देखकर एली अंदर तक दहल गए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि ईश्वर उन्हें इतनी शक्ति दे कि वे कभी अपने पिता के प्रति इतने निष्ठुर न बने। वो डर उनके मन में बैठ गया।
लेकिन जिंदा रहने की वो जो जद्दोजहद थी, वो शायद किसी भी रिश्ते पर भारी पड़ सकती थी। इसके बाद उन्हें खुली मालगाड़ियों में भरकर जर्मनी के बुखनवाल्ड कैंप ले जाया गया।
हाँ, खुली मालगाड़ियाँ, जनवरी की बर्फीली हवा में, वो सफर भी मौत का सफर था। कहते हैं जिस डिब्बे में एली और उनके पिता थे उसमें 100 लोग चढ़े थे। जब वो कई दिनों बाद बुखनवाल्ड पहुंचे तो सिर्फ 12 जिंदा बचे थे।
100 में से सिर्फ 12।
रास्ते में खाने के लिए जब जर्मन मजदूरों ने कभी कभी रोटी के टुकड़े फेंके तो उन टुकड़ों पर पिता और पुत्र के बीच जानलेवा लड़ाई होते हुए भी एली ने देखी। खुद उनके डिब्बे में ऐसा हुआ।
इंसानियत का इतना पतन।
बुखनवाल्ड में हालात और भी भयानक थे। यहाँ एली के पिता श्लोमो पेचिस डिसेंट्री से बुरी तरह बीमार पड़ गए। वे बहुत कमजोर हो गए, लगभग बेसुध हो गए थे। एली ने उनकी देखभाल की पूरी कोशिश की, अपना राशन भी उन्हें दिया, जबकि वो खुद भी भूख से मर रहे थे। लेकिन वो खुद भी टूटने की कगार पर थे। दूसरे कैदी उनके पिता को मारते थे, उनका खाना छीन लेते थे। ब्लॉक का मुखिया एली से कहता था कि अब पिता पर अपना राशन बर्बाद न करें, खुद जिंदा रहने की सोचें।
ये कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए।
बहुत ज्यादा। और फिर एक सुबह, 29 जनवरी 1945 की सुबह, एली सोकर उठे तो उन्होंने पाया कि उनके पिता की जगह खाली है। उन्हें रात में ही चुपचाप क्रेमेटोरियम ले जाया गया था। शायद तब भी उनमें सांसें बाकी रही हों, ये भी पता नहीं।
और एली ने नाइट में लिखा कि उस पल उन्हें कोई आंसू नहीं आया, बल्कि
हाँ, उन्होंने लिखा, आई डिड नॉट वीप एंड इट पेन्ड मी दैट आई कुड नॉट वीप, बट आई हैड नो मोर टीयर्स एंड इन द डेप्थ्स ऑफ माई बींग, इन द रिसेसेस ऑफ माई वीकेंड कॉन्शियंस, Could I have searched it? I might perhaps have found something like free at last.
आखिरकार आजाद। अपने पिता की मौत पर ये महसूस करना, ये उस पीड़ा और आमानवीकरण की इंतहा है जो उन्होंने झेली थी।
बिल्कुल। और इसी अपराध बोध ने, इसी एहसास ने उन्हें जीवन भर सताया। ये एहसास के कैंपों ने उन्हें किस हद तक बदल दिया था कि पिता का होना भी एक बोझ जैसा लगने लगा था। 11 अप्रैल 1945 को अमेरिकी सेना ने बुखनवाल्ड को आज़ाद कराया।
आज़ादी?
हाँ, लेकिन वो आज़ादी भी फीकी थी। आज़ादी के कई हफ्तों बाद जब एली गंभीर बीमारी से कुछ उभरे और पहली बार उन्होंने आईने में खुद को देखा तो उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखा, उन्हें एक लाश नजर आई। उन्होंने लिखा, फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द मिरर अ कॉर्प्स गेज्ड बैक एट मी, द लुक इन हिज आईज एज दे स्टेयर्ड इनटू माइन हैज नेवर लेफ्ट मी।
उस लाश की निगाहें उन्हें जिंदगी भर नहीं भूली। शायद इसीलिए उन्होंने, जैसा आपने कहा, 10 साल तक अपने अनुभवों के बारे में कुछ नहीं लिखा। उन्हें लगा होगा कि शब्द उस भयावहता को, उस खोखलेपन को बयां ही नहीं कर सकते।
जी बिल्कुल, वो एक तरह की पवित्र चुप्पी थी।
तो फिर ये 10 साल की खामोशी टूटी कैसे? कैसे ये किताब नाइट दुनिया के सामने आई?
युद्ध के बाद वे कई और यहूदी अनाथ बच्चों के साथ फ्रांस पहुंचे। पेरिस में उन्होंने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई फिर शुरू की, फ्रेंच सीखी, दर्शन शास्त्र पढ़ा और फिर पत्रकारिता करने लगे।
अच्छा, तो वो पत्रकार बन गए थे?
हाँ, और एक बड़ा मोड़ तब आया 1954 में, जब उनकी मुलाकात हुई नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसीसी लेखक फ्रांसवा मौर्याक से। मौर्याक, जो खुद एक बहुत धर्मनिष्ठ कैथोलिक थे, उन्होंने एली का इंटरव्यू लिया इसराइल के बारे में। इंटरव्यू के बाद एली ने मौर्याक को अपनी कहानी बताई। कहानी सुनकर इतने द्रवित हुए कि उन्होंने एली को इसे लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया को बताना तुम्हारा कर्तव्य है।
तो मौर्याक की प्रेरणा से नाइट का जन्म हुआ।
हाँ, कह सकते हैं। पहले उन्होंने यिदिश भाषा में एक बहुत बड़ी पांडुलिपि लिखी, 800 पन्नों से भी ज्यादा की। उसका शीर्षक था अन दी वेल्ट हॉट गेश्वीन, यानी और दुनिया खामोश रही।
और दुनिया खामोश रही, कितना सटीक शीर्षक है।
जी, बाद में मुरियाक की मदद से इसे संपादित किया गया, संक्षिप्त किया गया। 1958 में ये फ्रेंच में लानुई नाम से छपी और फिर 1960 में अंग्रेजी में नाइट के नाम से प्रकाशित हुई।
क्या किताब आती सफल हो गई थी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में किताब पर ज्यादा ध्यान नहीं गया, बिकी भी बहुत कम। कई प्रकाशकों ने तो छापने से ही मना कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी असाधारण शक्ति को लोगों ने पहचाना, ये मुंह जुबानी फैली।
और फिर एली वीजल सिर्फ एक लेखक नहीं रहे, बल्कि वो एक वैश्विक आवाज बन गए, है ना?
किताबें लिखी, उपन्यास, निबंध, नाटक, संस्मरण, वे बोस्टन विश्वविद्यालय में मानविकी के प्रोफेसर बने, दशकों तक पढ़ाया, लेकिन सबसे बढ़कर वे दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ एक नैतिक मशाल बनकर उभरे।
किन किन मुद्दों पर उन्होंने आवाज उठाई?
बहुत सारे मुद्दों पर, चाहे सोवियत संघ में यहूदियों का दमन हो, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद, अपार्थाइट का मसला हो, या फिर कंबोडिया, रवांडा, बोस्निया और दारफूर में हुए नरसंहार। वीजल ने हमेशा पीड़ितों के हक में आवाज उठाई, वो चुप नहीं रहे।
और इसी काम के लिए उन्हें 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। समिति ने उन्हें मानवता का दूत कहा था। उनके स्वीकृति भाषण की वो बात मुझे हमेशा याद रहती है, द ऑपोजिट ऑफ लव इज नॉट हेट, इट्स इनडिफरेंस। प्रेम का विपरीत घृणा नहीं, उदासीनता है।
हाँ, ये उनके जीवन के अनुभव का निचोड़ था। उदासीनता ही सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने अपनी पत्नी मैरियन के साथ मिलकर एली वीजल फाउंडेशन फॉर ह्यूमैनिटी की स्थापना भी की, जो असहिष्णुता के खिलाफ लड़ने और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आज भी काम कर रहा है।
ये भी सुना है कि 2009 में बर्नी मैडॉफ पोंजी स्कीम घोटाले में उनकी और फाउंडेशन की सारी जमा पूंजी डूब गई थी।
जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा झटका था उनके लिए, लेकिन तब भी उन्होंने अपना काम नहीं रोका। ये उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। 2016 में अपनी मृत्यु तक वे इसी मिशन में लगे रहे कि दुनिया होलोकॉस्ट को कभी न भूले, ताकि इतिहास की वो भयावहता फिर कभी न दोहराई जा सके।
उनके जीवन और लेखन के मूल में अगर हम देखें, तो कौन सा दर्शन या कौन से मूल्य नजर आते हैं? इतनी असहनीय पीड़ा झेलने के बाद को इंसान कैसे अपना रास्ता तय करता है, क्या सोचता है?
ये एक बहुत गहरा सवाल है। उनका दर्शन शायद, जैसा मैंने पहले कहा, आस्था के गहरे नुकसान और उसे पूरी तरह से नकारने की असमर्थता के बीच एक लगातार चलने वाला तनावपूर्ण संवाद जैसा था।
सबसे केंद्रीय तत्व जो मुझे लगता है वो था गवाह बनना, बेरिंग विटनेस। उनके लिए ये एक पवित्र जिम्मेदारी थी, सिर्फ इतिहास दर्ज करने के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की स्मृति को जिंदा रखने के लिए जिनकी आवाज हमेशा के लिए छीन ली गई थी। ये भविष्य के अत्याचारों के खिलाफ एक चेतावनी भी थी, एक ढाल।
लेकिन ईश्वर के साथ उनका रिश्ता कैसा रहा आखिर तक? क्या वो पूरी तरह टूट गया था, जैसा कि पाइपोल की फांसी के वक्त महसूस हुआ था?
ये कहना मुश्किल है कि वो पूरी तरह टूट गया। वो नास्तिक तो कभी नहीं बने, बल्कि उन्होंने खुद को हमेशा ईश्वर के साथ एक निरंतर संवाद में देखा। कभी कभी वो संवाद बहस का रूप ले लेता था, गुस्से का, आरोप का। उनका मानना था कि ईश्वर से सवाल करना, उस पर आरोप लगाना भी शायद आस्था का एक रूप हो सकता है।
अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, ये यहूदी परंपरा की उस गहरी भावना से जुड़ता है, जहाँ ईश्वर के साथ तर्क वितर्क करने, यहाँ तक के उससे कुश्ती करने, जैसे याकूब की कहानी में है, की भी जगह है। हाँ, ये जरूर है कि उनका ईश्वर अब वो भोला, सर्वशक्तिमान, हर पल रक्षा करने वाला, न्यायप्रिय ईश्वर नहीं रह गया था जो उनके बचपन में था। वो एक ज्यादा जटिल, शायद घायल, प्रश्न चिन्हों से घिरा हुआ ईश्वर था।
और स्मृति यानी याददाश्त, उसका उनके दर्शन में क्या स्थान था?
स्मृति, मेमोरी, उनके लिए पवित्र थी, बिल्कुल सेंट्रल थी। ये महज अतीत की घटनाओं को याद करना भर नहीं था, बल्कि एक सक्रिय नैतिक कर्म था। उनका मानना था कि भूल जाने का मतलब है पीड़ितों को दूसरी बार मारना और हत्यारों को उनकी अंतिम जीत देना। याद रखना एक जिम्मेदारी थी, हाँ एक बोझ भी था, जिसके लिए लगातार नैतिक साहस चाहिए।
और क्या चीजें थीं जो उन्हें प्रेरित करती रहीं? क्या सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास था या कुछ और भी?
जिम्मेदारी का एहसास तो बहुत बड़ा था, जाहिर है, खासकर वो जिसे सर्वाइवल गिल्ट कहते हैं, यानी इस अपराध बोध से प्रेरित होना कि वे क्यों बच गए जबकि इतने सारे लोग मारे गए। वो महसूस करते थे कि उन्हें उन सब की ओर से बोलना है जो अब बोल नहीं सकते। इसके अलावा अपने लोगों यानी यहूदी समुदाय और उसकी संस्कृति, उसके इतिहास और उसके मूल्यों से गहरा प्रेम भी उनकी एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। वे चाहते थे कि ये सब ज्ञान, ये परंपराएं संरक्षित रहें।
इतनी भयावहता और क्रूरता झेलने के बाद भी उनके लेखन में या उनके भाषणों में नफरत या बदला लेने की भावना नजर नहीं आती। उनका नजरिया क्या था इस पर?
इसे शायद हम गरिमामय अवज्ञा कह सकते हैं, डिग्निफाइड डिफायंस। उन्होंने अपने व्यक्तिगत असहनीय आघात को पूरी मानवता के लिए सबक में बदल दिया। उन्होंने अर्थहीनता में अर्थ ढूंढने की कोशिश की, पीड़ा में उद्देश्य ढूंढने की कोशिश की। इसका मतलब ये नहीं था कि वे उस भयावहता को कम आंक रहे थे या उसे भुला रहे थे, बिल्कुल नहीं, बल्कि वे उसे अपनी कहानी का अंत मानने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने अपनी पीड़ा को नफरत में नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ सकारात्मक कार्रवाई में बदला।
अगर हम उनके जीवन के तीन सबसे निर्णायक मोड़ चुने, ऐसे मोड़ जिन्होंने उन्हें और उनके नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया, तो पहला तो यकीनन ऑशविट्स पहुंचना ही होगा, है ना?
हाँ, बिना शक। पहला निर्णायक मोड़ था ऑशविट्स बिर्केनाओ आगमन और परिवार से वो बिछड़ना, मई 1944। वहां पहुंचते वो चयन की प्रक्रिया, उसने पलक झपकते में उन्हें उनकी माँ और छोटी बहन ज़िपोरा से हमेशा के लिए जुदा कर दिया, और फिर जलते हुए बच्चों के वो गड्ढे देखना, ये उनके अतीत का, उनके बचपन का, उनकी पूरी दुनिया का एक हिंसक निर्मम अंत था।
जी।
वहीं पर सिगेट के उस धार्मिक छात्र एलिजर की मौत हुई और कैदी नंबर A7713 का जन्म हुआ, जिसकी आस्था उसी धुएं और राख में कहीं खो गई थी।
जिस गति और निर्ममता से ये सब हुआ वो वाकई कल्पना से परे है। दूसरा मोड़ फिर शायद पाइपल की फांसी होगी।
निश्चित रूप से दूसरा निर्णायक मोड़ था पाइपल की फांसी। उस उदास आंखों वाले देवदूत जैसे लड़के का धीरे धीरे सबके सामने तड़प कर मरना, और उस वक्त एली के अंदर से निकली वो आवाज, ईश्वर यही है, इसी फांसी पर लटका हुआ है, ये उनके लिए ईश्वर की मृत्यु का प्रतीक बन गया। इसने ईश्वर के प्रति उनके रिश्ते को बुनियादी तौर पर बदल दिया। अब सवाल ईश्वर के न्याय पर नहीं था बल्कि उसके अस्तित्व या उसकी शक्तिहीनता पर था। ये उनके आध्यात्मिक संकट का, कह सकते हैं, चरम बिंदु था।
और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा व्यक्तिगत और शायद सबसे जटिल मोड़ था, वो उनके पिता की मृत्यु थी।
हाँ बिल्कुल, तीसरा था पिता श्लोमो वीजल की मृत्यु जनवरी 1945 भुखिनवाल में। उन चरम अमानवीय परिस्थितियों में पिता उनके लिए अतीत से, परिवार से, इंसानियत से जुड़ा हुआ आखिरी धागा थे। उनकी देखभाल करना एली के लिए जिंदा रहने का एक कारण भी था, एक जिम्मेदारी भी थी।
जी।
लेकिन जब पिता की मृत्यु हुई और एली ने अपने अंदर वो भयानक राहत, आखिरकार आजाद महसूस की, तो ये एहसास उन्हें अंदर तक तोड़ गया। ये ना सिर्फ अकेलेपन की पराकाष्ठा थी बल्कि ये भी दिखाता था कि कैंपो ने उन्हें नैतिक और भावनात्मक रूप से किस हद तक खोखला कर दिया था। वो अपराध बोध, जैसा मैंने कहा, जिंदगी भर उनके साथ रहा।
एली वीजल की कहानी और उनकी ये किताब नाइट, ये हमें इंसान होने के बारे में क्या सिखाती है? आज के समय में हम उनसे क्या सीख सकते हैं?
मुझे लगता है बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक तो उदासीनता के खतरे का है, इनडिफरेंस। चाहे वो सिगरेट के लोग हों जिन्होंने मोशे द बीडल की चेतावनी को नजरअंदाज किया, या फिर वो पूरी दुनिया हो जो काफी हद तक खामोश रही जब ये सब हो रहा था, उदासीनता ही अत्याचार को फलने फूलने का मौका देती है।
सही कहा।
वीजल का वो कथन कि प्रेम का विपरीत घृणा नहीं, उदासीनता है, इसी कड़वी सच्चाई को उजागर करता है।
ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी इंसानियत है, वो कितनी नाजुक है, कितनी आसानी से टूट सकती है। कैसे भूख, डर और हिंसा के चरम दबाव में सहानुभूति, प्रेम, यहाँ तक कि पारिवारिक बंधन जैसे बुनियादी मानवीय मूल्य भी बिखर सकते हैं।
बिल्कुल।
वो पिता पुत्र की रोटी के टुकड़े पर लड़ाई
जी,
या रब्बी एलियाहू के बेटे का अपने पिता को छोड़ देना, ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सब में भी वो अंधेरी संभावनाएं छिपी हुई हैं?
जरूर। और अपने मरते हुए पिता के प्रति एली के जो जटिल भावनाएं थीं, उनका जो बेहद ईमानदार चित्रण उन्होंने किया है, वो हमें चरम स्थितियों में नैतिक निर्णयों की जटिलता के बारे में सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि जो लोग अकल्पनीय, असंभव परिस्थितियों से गुजरते हैं, उनके फैसलों पर हमें बाहर से बैठकर आसानी से कोई नैतिक निर्णय नहीं सुनाना चाहिए। ये हमें करुणा और विनम्रता सिखाता है।
सही बात है
जी।
और अंततः ये कहानी याद रखने के नैतिक दायित्व पर बहुत जोर देती है ना? भूलना सिर्फ एक व्यक्तिगत विफलता नहीं है, ये एक सामूहिक नैतिक चूक है। पीड़ितों को भूल जाने का मतलब है उन्हें दूसरी बार मारना। उनकी कहानियों को याद रखना और उन्हें सुनाते रहना भविष्य को सुरक्षित रखने का एक जरूरी तरीका है।
हाँ, बिल्कुल, और ये गवाही देने की शक्ति, द पावर ऑफ टेस्टिमनी, उसको भी रेखांकित करता है, कैसे एक व्यक्ति की आवाज, उसकी कहानी चुप्पी के बड़ी से बड़ी दीवार को तोड़ सकती है और दुनिया को जगा सकती है, उसे झकझोर सकती है। एली वीजल की पूरी जिंदगी इसी बात का प्रमाण है।
तो अगर हमें एली वीजल की कहानी और नाइट से तीन प्रमुख बातें, तीन टेकअवेज निकालने हों आज के श्रोताओं के लिए, तो वो क्या होंगी? तीन बातें, ठीक है। पहली शायद होगी एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। होलोकॉस्ट का अनुभव सिर्फ शारीरिक पीड़ा का अनुभव नहीं था, ये आत्मा पर लगे गहरे जख्मों का अनुभव था। आस्था का खो जाना, मानवता का क्षरण महसूस करना, और सबसे बढ़कर जिंदा बच जाने का वो असहनीय अपराध बोध, वो पिता की मृत्यु पर आजादी महसूस करना या आईने में खुद को लाश के रूप में देखना, ये सब उसी गहरे भावनात्मक आघात के प्रतीक हैं जिसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है।
दूसरी क्या होगी?
दूसरी कह सकते हैं एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि।
हाँ।
गवाह बनने और याद रखने का जो नैतिक दायित्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्मृति यानी मेमोरी सिर्फ अतीत का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये भविष्य के प्रति हमारी एक सक्रिय जिम्मेदारी है। ये किताब हमें ईश्वर, पीड़ा, मानवीय क्रूरता की हद और हमारी अपनी जिम्मेदारी जैसे बड़े मुश्किल दार्शनिक सवालों से जूझने पर मजबूर करती है, ये सोचने पर मजबूर करती है।
और तीसरी,
एक सार्वभौमिक सीख।
हाँ, तीसरी एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। उदासीनता ही सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा खतरा है। जब कहीं अन्याय हो रहा हो, चाहे वो हमारे आसपास हो या दुनिया के किसी कोने में, तो चुप रहना भी उसमें भागीदार बनना है। हर व्यक्ति की, हर इंसान की ये जिम्मेदारी है कि वो देखे, याद रखे और जरूरत पड़ने पर आवाज उठाए और कार्रवाई करे। ये सिर्फ इतिहास का सबक नहीं है, ये हमारे आज और हमारे आने वाले कल के लिए एक सीधी चेतावनी है और एक आह्वान भी।
बहुत खूब। उदासीनता ही सबसे बड़ा खतरा है, ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है।
जी,
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।